پر مساجد میں بھی بہت سی جگہوں پر مساجد میں بھی اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ ہاتھ کا ذبیحہ استعمال کریں. اصل مسئلے کا مسئلے میں اختلاف ہے, یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ اکثر علماء, جمہور علماء اس کے قائل ہیں کہ جو ذبح کرنے کے, جو ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے شرط یہ ہے, کنیکشن ہے نہیں پتہ نہیں, ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس پر اللہ کا نام لیا جائے, اور یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہے. قرآن کریم سے ثابت ہے کہ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, وہ جانور نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. ظاہر ہے نص ہے, قرآن کی آیت ہے, بالکل صریح ہے, اس سے نہیں نکل سکتے ہم. اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مشین کا ذبیحہ حلال ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مشین جب چلائی ہے تو مشین چلاتے وقت بسم اللہ پڑھ لی, تو اب اس مشین سے جتنے ذبح ہوں گے, جانور ذبح ہوتے رہیں گے, وہ حلال ہوں گے. اس میں بھی مختلف آ رہا ہے, مختلف لوگوں کی, میں ایک رائے بتا رہا ہوں کہ بعضوں کی رائے ہے کہ مشین پر جس سے ذبح کیا جا رہا ہے اس پر اللہ کا نام پڑھ لیا, اللہ کا نام لے لیا, تو اب اس سے جیسے مثلاً ایک چھری سے ذبح کرتے ہوئے انسان اللہ کا نام لے لیتا ہے, ایک دو تین جانور اسی چھری سے ایک ساتھ ذبح کر لے تو تینوں سب حلال ہوتے ہیں. یہ ان کا استدلال ہے, یہ ان کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے جب دو جانور ایک ساتھ کوئی بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتا ہے تو حلال ہے, تو مشین پر جب بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں انسان تو جتنے بھی جانور ذبح ہوں گے حلال ہوں گے. استدلال صحیح نہیں ہے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو کھانا حلال نہیں. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. خیر, میں یہ بتا رہا تھا مسلک کا, یہ مسئلے کا اختلاف ہے, اختلافی مسئلہ ہے, لیکن تحقیق یہ ہے اور راجح یہ ہے اور صحیح یہ ہے کہ ہر جانور پہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے دو تین جانور کو انسان لٹا دے, بسم اللہ پڑھ کر تینوں پر بسم اللہ ایک ساتھ پڑھی, ایک ہی بسم اللہ پڑھ کے تینوں کو دونوں کو ذبح کر دے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن جو جانور سامنے موجود ہی نہیں ہے, مشین پر بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, تو مشین پر بسم اللہ کا حکم کہاں سے آیا؟ کس نے حکم دیا کہ مشین پر بسم اللہ پڑھنی ہے یا چھری پر بسم اللہ پڑھنی ہے؟ جانور پر بسم اللہ پڑھنی ہے. جو جانور ابھی تک مشین میں ہے ہی نہیں, وہاں موجود ہی نہیں ہے, اس پر بسم اللہ کیسے پڑھی گئی اور وہ کیسے حلال ہوگا؟ تو اس کا بہرحال یہ ہمارے لحاظ سے وہ معتبر نہیں ہے. جو علماء کہتے ہیں کہ صحیح ہے, وہ اس کے حلال ہونے کے قائل ہیں, تو ٹھیک ہے, وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال اب ہم کیسے اس مسئلے کو ہینڈل کریں؟ بعض لوگ حلال کہتے ہیں, اکثر لوگ حرام کہتے ہیں, ہم کیسے ہینڈل کریں؟ اگرچہ ہمارے ملکوں, یہاں ان ملکوں کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں شاید 90% یا اس کے قریب قریب ہوگا کہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہاں اس کو استعمال کرتے ہیں. آسان سی بات یہ ہے کہ جہاں مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگوں میں تھوڑا سا, اگرچہ تھوڑی شاید وقت لگے گا, لیکن آہستہ آہستہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو جہاں پر میرا ایک مسلک ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں, میں دوسروں کو یہ نہیں کہتا کہ تم غلط کرتے ہو. یہ اختلاف کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک حنفی ہے, حنفی مسلک کے مطابق وتر پڑھتا ہے, دوسرا شافعی ہے, اس کے موافق وتر پڑھتا ہے, تو ٹھیک ہے, تم جو پڑھ رہے ہو وہ بھی صحیح کر رہے ہو اور ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی صحیح کر رہے ہیں, تم ہمیں غلط نہیں کہو گے, ہم تمہیں غلط نہیں کہیں گے. یہی چیز صحابہ کے دور سے چلی آ رہی ہے. یہ چیز بہرحال ہمیں امت میں عام کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں اختلاف ہوتا ہے تم اپنے طریقے پر عمل کرو, تم بھی صحیح, میں اپنے طریقے پر عمل کروں گا, میں بھی صحیح, جہاں اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئی ہے, تو اس لیے اس میں زیادہ شدت کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ کہہ دیں کہ دیکھو میں حرام نہیں کہتا باقی چیزوں کو, لیکن میں صرف وہ کھاتا ہوں جو ہاتھ سے ذبح کیا ہوا ہوتا ہے. یہ میرے اپنی ذاتی وہ ہے کہ میں وہ کھاتا ہوں جو ہاتھ سے ذبح کیا ہوا ہوتا ہے, میں دوسرا نہیں کھاتا ہوں. آپ برا نہ لگائیں, میزبان کو بھی سمجھا دیں, کوئی حرج کی بات نہیں, اس کو سمجھا دیں کہ دیکھو یہ میرا ہے کہ میں احتیاطاً میں ان لوگوں کی رائے کو لیتا ہوں اور میں دوسروں کو حرام بھی نہیں کہتا, آپ لوگ کھا لیں لیکن میں نہیں کھاتا. جیسے مثلاً کوئی جھینگا کھاتا ہے تو ہمارے سامنے کوئی جھینگا کھا رہا ہے, میں کہوں ٹھیک ہے کھا لو لیکن میں نہیں کھاتا ہوں, اب اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں, تو ہمیں کہتے ہو حرام کھا رہے. نہیں, تم اپنے مسلک پر عمل کرو, اپنے مسلک کے لحاظ سے تم کھا لو, لیکن میں نہیں کھاتا, مجھ پر تو زبردستی نہ کرو. ایک شخص کی ایک رائے ہے, اپنے رائے پر عمل کرنے کا انسان کو اختیار ہے. ایک شخص ہے, وہ کچھ علماء کی رائے پر عمل کرتا ہے, تو ٹھیک ہے, اس کو حق ہے کہ ان علماء کی تقلید کرے اور ان کے موافق عمل کرے. یہ چیز بہرحال اچھے طریقے سے لوگوں کو, یعنی ظاہر ہے اچانک سے ملاقات میں تو نہیں ہو سکتا, لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ چیز سمجھائی جا سکتی ہے. اس طریقے سے اگر مثلاً کوئی دعوت دیتا ہے तो मुझे याद है एक शुरू दौर की बात है, जब दावत होती थी कहीं तो हज़रत की तरफ से ये पहले से होता था, देखो हमारी शर्त है कि अगर पर्दे का इंतज़ाम है तो हम आएंगे वरना नहीं आएंगे। और जाहिर है एक उसूली बात है। अब उसमें अगर कोई नाराज़ होता है तो उनकी गलती है कि नाराज़ क्यों होते हैं, कि एक ठीक है एक शख्स ये अपने अपने तरीक़े पर अमल कर रहा है और वो उसके लिहाज से हिजाब ज़रूरी है और वो अमल करना चाह रहा है, तो आपको यानी ये तो हक़ नहीं बनता कि आप अपने यानी किसी पर नाराज़ हों उसके मसलक पर कि वो उस मसलक पर क्यों अमल कर रहा है। गलती अपनी हो या ना हो, अपनी गलती इंसान पहचाने ना पहचाने, कम से कम दूसरे को तो हक़ है कि अपनी राय पर अमल करें। तो यहाँ पर भी यही चीज़ आम ज़्यादा उसको आम करने की ज़रूरत है कि देखो इख्तिलाफ़ होता है, इख्तिलाफ़ में जो अपनी राय पर अमल करे वो कर सकता है, दूसरे पर उस राय को ज़बरदस्ती ना करें। मैं अगर हाथ का ज़बीहा ही खाता हूँ तो मैं ठीक है मैं वही करूँगा, लेकिन अगर कोई और है जो मशीनी ज़बीहे को हलाल कहता है तो मैं नहीं कहूँगा कि तुम हराम खा रहे हो, नहीं, तुम्हें अपने मसलक पर अमल करने का हक़ है, मुझे अपने मसलक पर अमल करने का हक़ है। ये बहरहाल ये चीज़ है जो जहनों में हो और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता लोगों में भी ये चीज़ आम करें। बहरहाल अगर मस्जिद में किसी ने दे दिया है तो किसी ऐसे शख्स को दे सकते हैं जो उस तरह का खाता है, अगरचे उसूल यह है कि हराम खाना ख़ुद नहीं खा सकते, दूसरों को नहीं खिला सकते, ये उसूल है, लेकिन यहाँ पर यह हराम नहीं इख्तिलाफ़ है। जब इख्तिलाफ़ है तो जो लोग इस राय को लेते हैं और उसको हलाल समझते हैं उनको दे दो, वो खा लेंगे, या फिर इंसान यानी अगर वाकई किसी किसी उसको हराम ही समझता है और नहीं खाता तो उसको जानवरों को भी खिला सकता है, वो भी खिलाने के हुक्म में आता है, जानवरों को भी इंसान ग़िज़ा खिलाता है खाना खिलाता है तो उनको खिला दे उस हुक्म में भी ठीक है, उसको भी ज़ाया करना और गुनाह में शामिल नहीं होगा ये। अच्छा, बीर शिफा रोहा जमजम के पानी के अहकाम मुख्तलिफ हैं, उनका अहादीस में ज़िक्र है तो इसलिए उसकी बात मुख्तलिफ होगी, और बीर रोहा वग़ैरह का ज़िक्र यानी उसके शिफा होने का ज़िक्र सही रिवायतों में चूंकि नहीं है। हाँ शिफा है, तजुर्बे तजुर्बे से साबित है, तबर्रुक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि वहाँ तशरीफ़ ले गए, वो पानी इस्तेमाल किया वगैरह, तो तबर्रुक होना अलग चीज़ है और किसी चीज़ का हदीस से साबित होना अलग चीज़ है। तो जमजम उसके बारे में तो अहादीस में ज़िक्र मिलता है तो उसका दर्जा ऊंचा है, और बाकी जो हैं उनका दर्जा वो दर्जा नहीं है। हाँ इंसान आम पानी की तरह उसको इस्तेमाल कर ले और अल्लाह ताला से उम्मीद रखे कि या अल्लाह ये बरकत वाली चीज़ है, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी बरकत से शिफा अता फरमा दे, या इसकी बरकत से फ़लानी ये तकलीफ़ दूर कर दे, दुआ कर ले, तो उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन एतिक़ाद के लिहाज से जमजम के साथ जो एतिक़ाद होगा वो उसके साथ नहीं होगा, इसलिए कि जमजम के बारे में अहादीस में उसकी सराहत मिलती है और वो मंसूस है, एक चीज़ हदीस में हो और एक चीज़ यानी हदीस में ना हो, दोनों के दर्जे में फ़र्क होता है। यानी इसका मतलब यह है कि उसको बैठ कर ही पियेंगे, खड़े होकर ना पिए, अगर यही सवाल का मकसद है। सवाल ये है कि किसी को तकलीफ़ हो गई तो रोज़े में हिजामा करवा सकते हैं? हिजामा करवा सकते हैं, रोज़े में कोई हरज नहीं है, बस इतना है कि हिजामा करने की वजह से बाज़ों को कमज़ोरी हो जाती है तो रोज़ा बाकी रखना मुश्किल हो जाता है, उसका एहतियात कर लें कि ऐसा ना हो कि रोज़ा तोड़ना पड़े, वरना यह कि रोज़े की हालत में हिजामा करवा सकते हैं। एहराम की हालत में सऊदीया में पाबंदी है कि मास्क पहने, अब मास्क में और निकाब में कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क तो नहीं रहता, अगर निकाब नहीं भी पहना, वो निकाब औरतों के लिए तो फिर भी वो गुंजाइश है कि वो निकाब जो चेहरे से अलग रहता है अगर उस पर वो गुजारा कर लें और उस पर वो उसको वो काफ़ी समझ लें तो औरतों के लिए तो फिर मास्क पहनने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, सिर्फ वही वाला निकाब पहन लें जो कपड़े जो चेहरे से ज़रा दूर रहता है। हाँ मर्दों के लिए फिर मजबूरी होगी वहाँ के कानून और रसूल की वजह से, तो उस मजबूरी की वजह से मर्द अगर मास्क पहन लें तो फिर वही है कि चूंकि आम तौर पर यह चंद ही घंटों के लिए होता है, 2, 3, 4 घंटे के लिए होगा तो सदका देना होगा, सदका उसकी वजह से लाजिम होगा। औरत के लिहाज से ये देख लिया जाए कि अगर औरतों के लिए लाजिम है मास्क पहनना फिर तो ज़रूरी होगा, और अगर लाजिम नहीं है मास्क पहनना, निकाब वो वाला काफ़ी है जो चेहरे से अलग रहता है, तो फिर मास्क ना पहने। सामने वाले तो सामने सवाल कर सकते हैं कि जमजम खड़े होकर पीना ज़रूरी है या सुन्नत है या नहीं है। जमजम के बारे में दोनों राय हैं उलमा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जमजम और वज़ू के बाद का जो पानी है, वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना साबित है। तो ये दो पानी वो हैं जिनके बारे में ये सवाल है कि इनको खड़े होकर पीना पीना बेहतर है या खड़े होकर पीना सिर्फ जायज़ है, यानी बेहतर है अफजल है या सिर्फ जायज़ है। तो वज़ू के बाद का बचा हुआ पानी रिवायात में उसको खड़े होकर पीने का जिक्र मिलता है। अक्सर उलमा के नज़दीक उसको खड़े होकर पीना मुस्तहब है, खड़े होकर पीना मुस्तहब है वज़ू के बाद का पानी, लेकिन कोई बैठकर भी पी ले कोई हरज की बात नहीं है। जमजम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है खड़े होकर पीना। बाज़ उलमा या कह सकते हैं बहुत से उलमा की राय है कि खड़े होकर पीना मुस्तहब है, लेकिन ये सराहत कहीं नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमजम पीने के लिए खड़े हुए हों। खड़े थे तो खड़े हुए पी लिया, इसलिए वो राय ज़्यादा राजह मालूम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे तो खड़े होकर पी लिया। इसका मतलब है कि जमजम वो पानी है कि जिसको खड़े होकर पिए तो उसमें कोई कराहत खिलाफ अवला भी नहीं है। तो खड़े होकर पिए बैठ कर पिए दोनों में कोई हरज नहीं है। इंसान बैठा हुआ है बैठ कर पी ले, खड़ा है तो खड़ा होकर पी ले। ये दूसरी राय है जो जिस पर भी अमल कर लें, इख्तिलाफ़ में दोनों सूरतों की गुंजाइश होती है। कोई खड़ा होकर पीता है ठीक है, वो भी सही कर रहा है, इसलिए कि उससे अहतमाम बढ़ जाता है, तवज्जो बढ़ जाती है, ध्यान ज़्यादा होगा, दुआ का अहतमाम करेगा। एक होता है इंसान खड़ा होता है किसी चीज़ के लिए तो अहतमाम बढ़ जाता है, तो अगर खड़ा होकर कोई पीता है वो भी ठीक कर रहा है, उन उलमा की राय पर अमल कर रहा है जो उसको मुस्तहब कहते हैं, और आप सलात में से खड़ा होकर पीना साबित भी है। लेकिन अगर कोई बैठे हुए पी लेता है तब भी वो सही कर रहा है, वो भी गलत नहीं कर रहा है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जमजम आपको दिया गया हो और कसदन आप खड़े होकर पीते हो, इसका भी सराहतन सबूत नहीं मिलता है। दोनों राय हैं, इंसान इस पर भी अमल कर ले कोई हरज नहीं है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।